نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يرشي قلي زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے اس میں شعور آنے لگتا ہے تو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں بچپن کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں لڑکپن کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں جوانی کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس بچے کو جو ماں باپ کی طرف سے جو اس کو تربیت ملتی ہے جو گھر کا ماحول ملتا ہے وہ ماحول اس بچے کے اوپر موت تک ساری زندگی تک اثر کرتا ہے اس کی جبلت میں اس کی گھٹی میں وہ ماحول شامل ہو جاتا ہے اور میڈیکل سائنس سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ انسان کی زندگی پر دو چیزوں کے بہت اثر آتے ہیں ایک تو جس کو ہم بولتے ہیں جینیٹکس ماں باپ کے جو بلڈ کے جو اثرات ہوتے ہیں اور دوسری چیز صحبت دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا مرکب بنتا ہے جس سے انسان تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے جو بھی اس کو گھر کا ماحول ملتا ہے اس حساب سے وہ زندگی ڈھالنا شروع کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کے ابا کے داڑھی ہے اور اسے نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ لیکن گناہ سے نہیں بچتے ٹی وی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں والد صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں داڑھی بھی ہے نظروں کی حفاظت بھی نہیں ہے غیر شرعی تقریبات میں بھی آنا جانا ہے لیکن بغیر دیندار نظر آ رہے ہیں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ پھر جب ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی دیندار ہوں گی اگر بہت ہوئی تو اتنا ہی ہوں گی جتنے ابا دیندار ہیں کیونکہ ابا نے اتنا ہی مول دیا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو تھوڑا سا اور داڑھی رکھ لو تو وہ ہلکی پھلکی جو جزوی دینداری ہوتی ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں پھر لوگ تو بچے نے یہ دیکھا گھر کا ماحول تو اب وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا یا تو وہاں تک بھی نہیں پہنچے گا ایک دو قدم پیچھے رہے گا وہ بچہ یا اگر تھوڑا بہت دین اگر آگے تو اتنا جو ماں باپ نے اس کو گھر کا ماحول دیکھا جو اس نے دیا ہے ماحول یا جو تعلیمات دی وہ اتنا ہی چلے گا وہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی اللہ والے کے پاس کوئی چلا گیا اچانک یا کوئی تبلیغ میں چلا گیا ماشاء اللہ مبارک کام کی برکت سے اللہ نے جب فرما لیا اس کو ماں باپ سے آگے کر دیا ہدایت میں بڑھ گیا وہ لیکن عام حالات میں وہ جو بچہ ہوگا وہ زیادہ نشو نما تخوے میں کر نہیں پائے گا وہ بس جتنے ماں باپ نے دیا لمیٹڈ رہے گا وہ اسی طرح اگر کوئی ماحول کی وجہ سے اگر کوئی 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوا اور اس نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نے اگر کسی کے داڑھی مڑاتے ہیں تو وہ بچے نے بھی داڑھی مڑانا شروع کر دی تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ 15 سال سے لے کے اور پھر مثال کے طور پہ اگر وہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے تو وہ جب تک موت کے منہ تک جیسے اگر وہ بچہ 70 سال تک جیے تھا وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 70 سال میں اگر اس کا انتقال ہوا تو عام حالات میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ 70 سال کی عمر تک لحد تک وہ داڑھیوں کو مونڈتا ہوا مرے گا وہ ایسا دیکھتے ہیں نا معاشرے میں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن عام حالات میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو وہ گناہ کر رہا تھا وہ موت تک وہ کرتا رہے گا 55 سال تک داڑھیاں مونڈتے مونڈتے وہ مر گیا اگر وہ غیر شرعی تقریب میں جاتا تھا بد نظری کرتا تھا کوئی ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا جو بھی تھا تو پھر موت تک اس کو یہ حال ہوگا کہ وہ 70 سال کی عمر تک اس کو وہی ماحول ہوگا وہی عورتوں کے ساتھ بد نظری وہی ٹی وی کے اوپر وہی موبائل سیٹ کے اوپر کیونکہ اس کی گھٹی میں چیز پڑ گئی تو وہ معاملات کرتا رہے گا اگر کوئی رشوت خور ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے کوئی سود خور ہوتا ہے اکثر تو جس کو جو گناہ کی عادت پڑی ہے تو جب وہ بالغ ہونے کے بعد جو بھی اس کو یہ چیزیں ملیں تو پھر موت تک وہ پھر وہ ان معاملات کو ان اعمال کو گندے طریقے سے کرتا رہے گا تو اکثر ایسے لوگ کے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے ایسے لوگ کی زندگی میں کبھی یو ٹرن نہیں آتا بھائی یو ٹرن آتا نا ہم سیدھے سیدھے ون وے پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی تو بیچ میں ہم دیکھتے ہیں ہائی وے وغیرہ پہ یو ٹرن آتے ہیں لیکن تھوڑے گیپ کے بعد آتے ہیں تو یو ٹرن کا کیا مطلب ہے بھائی اگر کسی کو واپس جانا ہو تو پریشان نہ ہو یو ٹرن لے کے واپس جا سکتا ہے وہ لیکن اس طرح کے لوگوں کی زندگی میں موت تک کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا वो बोल नहीं रहे होते, वो बोल नहीं रहे होते अपने मुंह से बज़बाने हाल कि मैं मौत तक यही हरकतें करूंगा, मैं मौत तक दाढ़ी मुंडाऊंगा, ये मैंने कसम उठाई हुई है, मैं मौत तक बदनजरी करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, कितने ही मेरे ऊपर मुसीबतें आ जाएं, कितनी बीमारियां आ जाएं, कितने मेरे बाईपास हो जाएं, कितने मेरा सीना चीर दिया जाए, कितने अल्लाह के अजाब आए, कितनी तकलीफें आ जाएं, मैं औरतों को देखना नहीं छोड़ूंगा, कहता नहीं है वो। इसी तरह जो जिस गुनाह में, कोई नहीं बोलता कि मैं मौत तक ये लोगों से ऐलान नहीं करता फिरता वो कि मैं ये ऐसा करूँगा, लेकिन होता यही है, होता यही जो अमली तौर पर जो नज़र आता है कि यू टर्न जिंदगी में नज़र नहीं आता, और इसी पलीत हालत में अक्सर की मौतें आ जाती हैं। तो भाई ये बड़ी ख़तरनाक और लम्हे फिक्रिया होता है। किसी शायर ने माजी में किसी ने कहा था, अब आ चुका बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ चुका बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए। और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने माजी में शायद कोई शेर भी कहा था, जो हमने शायद कोर्स में पढ़ा था 9th-10th में, आज से 35-40 साल पहले, उर्दू की जो सियाक व सबाक के हवाले, मरकजी ख्याल के हवाले से बताना पड़ता है, वो शेर याद आया अचानक कि वो जवानी में अदम के वास्ते समा पैदा कर, जवानी में अदम के वास्ते, यानी आखरत, कबर, मौत, हशर, बरज़ख़, जवानी में अदम के वास्ते समा पैदा कर, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो भाई यहाँ तो जवानी में कहा जा रहा है, यहाँ तो 60 साल के बाद लोग हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी बचपना जो है उनका वो नहीं ख़त्म हो रहा होता। वो एक कहावत है ना, किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, उम्र पचपन की दिल बचपन का। तो उम्र पचपन की दिल बचपन का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज आदमी के अमाल होने चाहिए। ठीक है, एक बचपना था, लड़प्पन था, 20 साल में आप थे, कोई एजुकेशन सिस्टम आपको मिला, घर का माहौल अच्छा नहीं था, ठीक है, कुछ हैंकी पैंकी हो गई, मान लिया, शहवत थी, जवानी थी, घर का माहौल भी अच्छा नहीं था, लेकिन 20 साल उम्र की बात थी वो। फिर आप 25 साल के हुए, फिर 30 साल के हुए, फिर 35 साल के हुए, फिर 40 साल के हो गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, है ना, फिर तकलीफें उठाई, बीमारियाँ उठाई, कितने बाज अमाल की वजह से जो तकालीफ आई वो भी इंसान को पता होता है, मैंने कौन कौन से अमाल किए थे जिसकी वजह से मुझे ये उसकी पादाश में ये तकालीफ मुझे उठानी पड़ी। अल्लाह ने इसलाह भी की, अल्लाह ने मोहब्बत भी करी, अल्लाह ने नेक यानी जो चीज़ें भी अता फरमाई, रहमत भी बरसाई, नेमतें भी अल्लाह ने खूब बरसाई, इसलाह भी करी, मोहब्बत भी करी, सख्ती भी करी, इसलाह के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते, तकवे के वास्ते, आखरत की तैयारी के वास्ते। लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहे, बाज़ लोग नहीं समझते, वो कहते हैं यार दुनिया में आए तो ये तो मामला चलते रहते हैं, ज़िंदगी के साथ होता है नशे व फराश, खुशी गमी दुख तकलीफ, तो उसे रूटीन का हिस्सा समझते हैं। तो फिर अल्लाह पाक देख लेते हैं कि भाई ये तो बंदा अपनी इसलाह के लिए और तकवे के लिए अब ये संजीदा नहीं है, अब इसकी उम्र हो गई है 50+ 60+, अब तो इसका जाने का वक्त है। बहरी बात है, अब 20 साल का लगा बोल सकता है कि मैं अभी बहुत जीऊँगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मौत का वक्त कोई नहीं पता। कहते हैं आने की तर्तीब होती है ना, पहले परदादा आते हैं, फिर दादा, फिर अब्बा, फिर पोता, आने की तर्तीब होती है, लेकिन जाने की तर्तीब नहीं होती। दादा बैठे हैं, पोता बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म, उम्र क्या थी 17 साल। तो आने की तर्तीब होती है, जाने की कोई तर्तीब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक 20 साल का कह सकता है मैं बहुत जीऊँगा अभी, मान लिया। लेकिन जो 50-60 साल का हो गया भाई, वो तो कह ही नहीं सकता कितना जी लेगा वो, 5-10 साल यही एवरेज है पाकिस्तान में। फिर उसमें से हम 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे रोज़ाना सोने की हम निकाल दें इस 10 घंटों में से, फिर उसके बाद हम वो कैलकुलेशन करें कि हालत बेदारी में हमारे कितना टाइम बचता है, कितना टाइम पीरियड है, उसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लें, है ना। जैसे मेरी उम्र 50 के करीब है, 50 अब कितना जी लूँगा हमें का नहीं पता। आप असलम फरमा रहे हैं सुबह करो तो शाम की तुम्हें उम्मीद रहो, और शाम करो तो रात की उम्मीद रहो, मौत को अपने सामने ऐसे तुम पाओ, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो शरीयत तो मैं ये हुक्म दे रही, लेकिन बिलफर्ज मान लिया मैं कह भाई मैं 50 साल का हूँ, जैसे बहुत कितना जी लूँगा, 10 साल 15 साल बहुत, अगर बिलफर्ज ये भी, फिर उसमें से रोज़ाना 6-8 घंटे की अगर मैं निकाल दूँ अपनी ज़िंदगी के सोने के जो टाइमिंग है, मरा हुआ आदमी सोया हुआ आदमी बराबर होता है, नहीं पता होता उसे। तो पता चला कि 10-15 साल की जो ज़िंदगी जो बची है उसमें से 4-5 साल तो सोने के मैंने निकाल दिए, तो पता चला हालत बेदारी की जिंदगी मेरी 5 साल की है, 5-6 साल की। तो मौत को आदमी ऐसे असेसमेंट करे, ऐसे कैलकुलेट करके रखे। अब आदमी देखेगा यार 5-6 साल की मेरी जिंदगी है, इस हिसाब से जो मेरे अमाल हैं वो क्या है, मैं दुनिया का कितना मुतलाशी हूँ, मैं आखरत का कितना मुतलाशी हूँ, क्या मेरी वर्किंग अब तक हुई है दुनिया के मामलों में, आखरत के मामले में। अगर इस हालत में मौत आ गई तो हुकूक अल्लाह कितने पूरे किए, हुकूक इबाद कितने पूरे किए, कितनी फर्ज़ैन वाली चीज़ें मैंने उसको तैयार की, कंप्लीट किया, कितनी वो चीज़ें जो अभी तक मैंने टच ही नहीं की, विरासत के मामले मैंने पूरे किए नहीं किए, कौन सी वो चीज़ें हैं जो तौबा से माफ़ नहीं होती, जिनका आधा दोहराना लौटाना ज़रूरी है, वो भी मैंने जानने की कोशिश की नहीं की। लेकिन भाई इस तरफ, इन तरफ सोचने को हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इस तरफ तो सोचने को टाइम ही नहीं है। तो अब 5-6 साल की ज़िंदगी है भाई मेरी, 50 साल जिसकी ज़िंदगी है, अपनी मिसाल हम दे रहे हैं, वरना जो 50 के या उससे अबव हैं तो उनको सोचना चाहिए। कैलकुलेशन तकरीबन यही तो वक्त है, कहाँ टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, बहुत मुख्तसर शॉर्ट टाइम है। लेकिन उसमें वही बात कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है, आप असलम ने ये भी फरमाया, हदीस पाक का खुलासा है कि इंसान की ज़िंदगी में मौत का वक्त आ जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी आरजुएँ तवन्नाएँ जो होती हैं वो उसके मौत के बाद की, जो 50 साल के बाद की आरजुएँ उसकी होती हैं। लेकिन उसकी बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चार्ट बनाया था, ड्राइंग बनाई थी, इसमें मुरब्बा बनाया था चौकोर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को सिखाया था, बताया था, उस मुरब्बे में एक बीच में लाइन ड्रॉ करी थी, स्क्वायर बनाया मुरब्बा, बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और एक जहाँ वो लाइन जब बीच में ड्रॉ करी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको 1 इंच थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इससे गर्दन बाहर निकलती है, और उस बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसके दाएँ बाएँ लकीरें डाल दी जैसे पसलियाँ होती हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी वीशिमा फरमाया, उसकी तशरीह फरमाई थी, जो मुरब्बा जो है, स्क्वायर जो है, ये एक तरह ये दुनिया है समझ लो, और बीच में जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये इंसान की ज़िंदगी है, उसकी उम्र, और दाएं बाएं जो लकीरें हैं ये उसके हवादिस और परेशानी है जो उसको आती हैं, बीमारियाँ परेशानियाँ आजमाइशें। और आपने इरशाद फरमाया कि ये जो लकीर जो मुरब्बे से बाहर निकल रही है 1 इंच, होना तो ये चाहिए था कि वो लाइन जो थी, अच्छा उस वक्त लगता है कि वो जो लाइन जो थी उसको क्रॉस ना करती है कहीं, बल्कि वो उस वहीं तक आती जहाँ तक वो मुरब्बा बना, बस वहाँ रुक जाती वो, लेकिन 1 इंच बाहर निकली हुई है गर्दन की तरफ से। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये जो मुरब्बे तक जो लाइन है यहाँ ज़िंदगी की लाइन है, ये इसकी यहाँ मौत वाक़ होनी है, ख़त्म है इसकी कहानी। और ये जो 1 इंच जो बाहर तुम देख रहे हो ये निकली हुई जो लाइन है, फरमाया ये वो उसकी आरज़ू है जो मरने के बाद की है। नहीं, इसको बहुत कुछ सोचा हुआ था, इसने भी ये करना है, प्लॉट लेना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ज़ालिम ये तो भी यहाँ मर रहा है, ये तो 10 साल के बाद की कहानी है। तो आप सल्लम मना फरमा रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ जो ख्वाहिशात हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी के ताबे रखो जितनी तुम्हारी उम्र है। आज लोगों का पेट ही नहीं भर रहा, 1 दुकान 2 दुकान 4 दुकान 6 दुकान 10 दुकान, 1 फैक्ट्री नहीं कम है, 2 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री नहीं 4 फैक्ट्री, बाजी नहीं आ रहा है। हर आदमी अक्सरियत नाशुक्रों की, लखपति करोड़पति को देख कर खासे कमतरी उबतला हो रहा है, करोड़पति वो भी कितने ऐसे करोड़पति मिले वो भी खासे कमतरी के मारे। एक दफ़ा वाकया पहले भी एक दफ़ा बताया था मैंने, एक दफ़ा मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था, अपनी आंखों देखा वाला वाकया बता रहा हूँ। एक साहब आए तो माशाल्लाह वो कपड़ों से और अपनी बातचीत से लग रहे थे कि पैसे वाले आदमी, और ऐसे ही फिर हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी सदर में कई दुकानें और बैंक बैलेंस अपना बताया, तो अरबपति आदमी कम से कम थे वो माशाल्लाह से, लेकिन क्या नफसियाती मरीज हो गए थे वो। वजह क्या थी, डॉक्टर से उन्होंने बताया कि रसम मैं जब कोई बैठा हुआ होता हूँ अपनी दुकान पर, सामने वाला जो है मेरी दुकान के बिल्कुल सामने जिसकी दुकान है उसके पास भी वही आइटम है जो मेरे पास हैं, कोई फ़र्क नहीं, और रेट भी वही है जो मेरे हैं, और वही वो भी रेट देता है, लेकिन रश उसके पास ज़्यादा होता है, मेरे पास कम रश होता है। तो मैं जब दुकान खोलता हूँ तो शाम तक मैं इसी घुटन में जलता रहता हूँ, सुलगता रहता हूँ कि जब एक ही रेट है, एक ही माल है, तो ये कस्टमर जो है ये सिर्फ इसके पास कसरत से क्यों जाते हैं, मेरे पास इतने कम क्यों आते हैं, मैं महंगा दे रहा हूँ, ख़राब क्वालिटी दे रहा हूँ तो चलो एक बात है। तो वो जो देख देख के मुस्तकिल एक सोच जो उसने देख ली कि ये ज़्यादा क्यों कमा रहा है, ये ज़्यादा क्यों कमा रहा है, जबकि ख़ुद ये भी बता रहे हो कि मैं उससे कहीं ज़्यादा रिच हूँ, उसकी तो एक दो दुकान है, मेरी तो कितनी पूरी पूरी मार्केट है, लेकिन शुक्र नहीं है, शुक्र नहीं है। तो इस हसद में उसने कहा कि मेरी कानों से आग निकलती है, मुझे महसूस होने लगी है, मेरी कनपटियों में खिंचाव हर वक्त रहता है, और बाज दफ़ा गम और गुस्से से मेरी आंखों से आंसू टपकते हैं, वो आंसू नहीं लगते, लगता है जैसे अंगारा निकला है वो आंखों से। ये कहलाती है दुनिया की हविस, दुनिया परस्ती। अगर इसको लगाम ना दी जाए ना, दुनिया की जायज़ ख्वाहिशात को भी अगर लगाम ना दिए जाए तो इंसान पागल तक हो जाता है। ये एक मिसाल नहीं है, गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं वो भी रो रहे होते हैं। लखपति करोड़पति को देख रहा है, करोड़पति अरबपति को देख रहा है, अरबपति खरबपति को देख रहा है, बस ही नहीं कर रहा है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। ये पागल होने से बचा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र की नीयत हमारे अंदर पैदा हो, शुक्र की सिफात पैदा हो, ये तरबियत कर रहे हैं कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो दुनिया के मामले में, नहीं तो क्या होगा फिर इसके जो मनफी असरात नज़र आते हैं, नाशुक्रापन पैदा होता है, शिकवे शिकायतें पैदा होते हैं, क्योंकि दुनिया ही है। अल्लाह ने कहा हमने बास को बास पर फजीलत दी, यहाँ बराबर नहीं है, हुसन हो, जवानी हो, पैसा हो, दौलत हो, हर चीज़ में अल्लाह ने फजीलतें रखी, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों को बांटा है अल्लाह ने, एक के ऊपर है। कोई हुसन पे नाश करता है तो अल्लाह पाक ऐसा हसीन सामने ला के खड़ा कर देते हैं, वो शर्मा जाता है, मैं तो अपने आप को हसीन समझ रहा था, है ना। तो ये तो दुनिया है, तो यहाँ तो बस नहीं करेगा आदमी, हर फील्ड में एक से अल्लाह पाक ने वाफिर मकदार में नेमतें पैदा करी, तो बस जिसको जो अल्लाह ने दे दिया वो अपनी उस लिमिटेड चीज़ों में शुक्र पैदा करने की कोशिश करे अपने अंदर। और शुक्र पे वादा है अल्लाह का, लाइन शुक्र तुम लजीदन्नकुम, के मैं तो शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा तुम्हें नवाज दूंगा, ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है, सख्त है। ना शुक्रपन पे शदीद अजाब की बात कर रहे हैं अल्लाह पाक। आज हम लोग देखें क्या हमारे अमाल हैं, क्या हमारी मेहनत है, लेकिन अल्लाह पाक हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कितनी महंगाई हो जाए। लेकिन आज कोई बता दे, अगर कोई दो या तीन अगर आइटम दस्तरखान पे लगते थे, कोई बता दे मुझे कि वो तीन से एक पर आ गए हो। तीन से चार तो डिशेज हो गई हैं, लेकिन तीन से दो या एक नहीं हुई हो, क्योंकि रज़ाक वो है। मेरे मौजूदा शेख हमारे प्यारे मुर्शिद हलीम उल उम्मत वली इब्ने वली हज़रत मौलाना मुबर साहब दामत रकातों में इरशाद अक्सर बयान में फरमाते हैं कि अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, कितनी महंगाई हो जाए कि अल्लाह पाक वही खिलाएंगे अगर अल्लाह से तुम्हारा रब्ता दुरुस्त है तो, क्योंकि वो रज़ाक है, रज़ाक है, वो राज़िक जो है वो है, रज़ाक वो है, रिस्क देने वाला वो है। हमें IMF कर्जा दे के हमें नहीं खिला रहा, हमें हुकूमत नहीं खिला रही, हमें अल्लाह पाक खिला रहा है। ख़राबी जो होती है महंगाई से नहीं होती, ख़राबी हमारे अमाल से ही नहीं होते। फजर की नमाजों का फुकदान है, बहुत से लोग इस चक्कर में शादियाँ भी नहीं करते, यंगस्टर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, खाऊंगा कहाँ से, खिलाऊंगा कहाँ से, तो ये जाहिलाना सोच है, ये दीन से दूरी की सोच है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ए गिरोह नौजवानों, ए नौजवानों के गिरोह, तुम लोग गुरबत की वजह से शादी में देर मत करो, निकाह में देर मत करो। तो अल्लाह के ज़िम्मे है शान रहमत, अल्लाह के ज़िम्मे है, वाजिब है, जो पाक दामन रहने के लिए, तकवे के उसूल के लिए, वो अगर निकाह करेगा तो अल्लाह के ज़िम्मे अपनी रहमत से उसको मालदार करेंगे, गनी करेंगे। लेकिन आज माँ बाप ही शादी नहीं करते, अरे बेटा भी पैरों पे कहाँ खड़ा हुआ है, अरे किस तरह खड़ा होगा मानते ही नहीं, अरे भाई कितनी खा लेगी आने वाली लड़की बेचारी रोटियाँ, क्या उसकी ज़रूरत होंगी। क्या रसूल अल्लाह सल्लम की मसला तो यही है, आज कुरान पाक की आयतें, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की बातें, और हमारे प्यारे आक़ा दो जहां नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे आज हम मुसलमानों को वैसा यकीन नहीं रहा जैसा होना चाहिए। अल्लाह रसूल के आगे हम लोग अपनी अक्ली दलीलें पेश करते हैं, अच्छा ये भी कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये शैतानियत हुआ। अबे भाई जब मान रहे हो अल्लाह रसूल का हक है, लेकिन कहाँ से आ गया। और फिर ये भी हदीस शरीफ आपने इरशाद फरमाया, खुलासा है कि लेकिन अगर मगर चूंकि ये सारे शैतानी दरवाजे से शैतान के दरवाजे खुलते हैं, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। बाज़ लोग कहते हैं काश मैं ये कर लेता लेकिन यार ये हो गया, अरे भाई जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। तो ये ईमान की कमी की अलामतें। तो अब मसला ये होता है लोग शादी करने से डरते हैं कि उसके अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे, बीवी के तनख्वाह इतनी है नहीं या बेरोज़गार है। तो इसके बारे में शादी होने की वजह से खराबियां पैदा नहीं होती। अरे ज़ालिम तो मोबाइल पे नंगी चीज़ें देखता रहता है, उसकी वजह से रिश्ता तंग होता है। नमाज फजर की नहीं होती, उसकी वजह से रिश्ता तंग हो रहा है। शादी से तो रिश्ता खोल रहे हैं, लेकिन शैतान हमें क्या दिखाता है, शादी करोगे तो रिश्ता हो जाएगा तुम्हारा। शैतान उल्टी पल्टी पट्टी पढ़ाता है। शैतान कभी नहीं बोलेगा जालिम तेरा रिश्ता तो जिन चीजों से बढ़ेगा उनमें एक शादी भी है। रिश्क की जो कमी होती है वो नमाजों में गफलत और डंडी मारने की वजह से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह के जिम्मे है उसको उसकी रिस्क की कमी को दूर करना, और जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और ख़ास तौर पे फजर की उनका जो रिस्क होता है वो अल्लाह पाक जो है वो समंदर के अंदर भा देते हैं, सारा रिस्क चला जाता है। बाज़ लोग को दिल में अश्काल पैदा हुआ, उन्होंने सवालात किए भाई हदीस शरीफ तो ये कह रही है, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े जो मार्केट वाले होते हैं वो तो 12-1 बजे दुकान खोलते हैं, पड़े हुए सोते रहते हैं, सुबह तो नहीं खुलती दुकानें, फजर भी लोग नहीं पढ़ते लेकिन खूब कमाते हैं। तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ने फरमाया उलमा कराम ने कि बगैर पैसा अगर आ भी जाए तो उसमें बरकत नहीं होगी, बरकत ख़त्म कर दी जाती है। तो फजर में उठना, फजर की नमाज पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, इससे सारे मामले आदमी के दुरुस्त होते हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा हर मुसीबत से निकाल देंगे, खूब गनी फरमाएंगे और ऐसी जगह से रिज़्क देंगे जो वहम गुमान में नहीं होगा। तो पैसा तो इन चीज़ों से आएगा, अल्लाह से मामलात हमारे हम जो है अपने दुरुस्त करते नहीं हैं और मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं बीवियों को और शादियों को, तो ये तो जहालत वाली बात है भाई। तकवे पर आओ, गुनाहों को छोड़ो, फजर की नमाज पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो, तदबीर अख्तियार करो, अल्लाह से लॉ लगाओ, देखो अल्लाह पाक कितना वाफिर मकदार में रिस्क देंगे। शादी के बाद तो रिस्क खुलता है, लेकिन आज ये लोगों की फोन में नहीं आती वही बात कि हर इंसान ने अपनी एक नई अलग शरीयत बना ली है। किससे सर फोड़े आदमी, आजकल बाज़ लोगों को समझाना ऐसा जैसे चट्टान के आगे सर फोड़ना है। पुरानी कहावत थी ना भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना नहीं समझते। अल्लाह जिसको फजल फरमाए तो भाई वो अलग मामला है। इसी तरह बगैर कितनी चीज़ें हमें नज़र आएंगी कि जो बगैर उसमें हम सही हैं, लेकिन अल्लाह रसूल उसका उलट जवाब दे रहे हैं। जैसे हदीस शरीफ का एक और खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बार बार हज उमरे करो, बार बार फरमा रहे हैं बार बार हज उमरे करो, इससे अल्लाह पाक तुम्हारी तंगदस्ती और मोहताजगी को दूर फरमा देगा, गनी फरमा देगा। अब अकल क्या कहती है भाई, आजकल तो इतना बढ़ गया, उमरा भी अगर आदमी करने जाता है एक बंदे का 2-2.5 लाख रुपए बिल्कुल मामूली सा नॉमिनल पैकेज भी अगर हमने लिया तो 2-2.5 लाख का खर्चा है, 2 बंदे भी करेगा तो 5 लाख का खर्चा है, तो 5 लाख निकल जाएंगे। लेकिन आप सलम क्या फरमा रहे हैं, बार बार हज उमरे करो, इससे अल्लाह पाक तुम्हें गनी करेंगे। अकल की नफी कर दी, क्या चलाक मत बनो और होशियार मत बनो, मेरे फरमान पर तुम नज़र रखो, अल्लाह तुम्हें नवाज देंगे। यहाँ तक आप ने इरशाद फरमाया मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप सलम को कसम उठाने की ज़रूरत थी बताइए, लेकिन उनको पता था आइंदा जो मेरे उम्मती आएंगे बड़े ईमान और यकीन में उनकी कमज़ोरी होगी, इसलिए आप ने कसम उठा रहे हैं। देखो मैं तुम्हारा नबी जिसके लिए कायनात बनी है इमामुल अंबिया, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम खा के कहता हूँ सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता बल्कि रिस्क में अल्लाह और इजाफा करते हैं। तो कसम उठा के फरमा रहे हैं, तो कितनी चीज़ें बगैर हमें ऐसी लगेंगी जिसमें नुकसान है लेकिन उसमें फ़ायदा छुपा हुआ है, और जिन चीज़ों में हमें नुकसान नज़र आता है उसमें हमें फ़ायदे नज़र आते हैं, लेकिन शैतान उस तरफ नहीं आने देता, वो कुछ और पट्टी हमें पढ़ाता है। जैसे जहर जो होता है अक्सर किसी को हम देते हैं जो मार्केट में मिलता है, मौत वाकई हो जाती है, तो हकीम बताते हैं कि अक्सर जो जहर होता है वो मीठा होता है लजीज, और जहर का जो तोड़ होता है कि अगर इतने घंटों में अगर तरियाक जिसको बोलते हैं तोड़ जिसमें शिफा होती है जहर की, तो वो कड़वी होती है। इसमें बड़ा राज है, आदमी गौर करता रहे कि जिस जो चीज़ें जहर कातिल हैं जो हलाक करने वाली हैं वो अक्सर मीठी होती हैं, मज़ा आता है, और जिनमें शिफा छुपी हुई होती है जिससे जान बचती है वो अक्सर कड़वी होती हैं। अगर आदमी की अंदर की नज़र अल्लाह बेदार कर देना तो अल्लाह पाक खुद उसको इल्हाम करते हैं मिसालें दे दे के ये सारी चीज़ें। तो आज यही मामला है कि वो चीज़ें जिनमें हमें मज़ा लगता है, कशिश महसूस होती है, जैसे मोबाइल सेट में बड़ा मज़ा आता है, लड़कियाँ देख रहे हैं, औरतें देख रहे हैं, नंगी चीज़ें देख रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, जहर है, दुनिया भी तबाह होगी आखिरत भी होगी, अगर तौबा नहीं की तो बीमारियाँ भी आएंगी, अल्लाह का अजाब भी आएगा, अल्लाह ना करे ज़्यादा अगर आदमी ने बदमाशी दिखाई नहीं भागाया हरकतों से फिर एक्सीडेंट भी होते हैं, फिर हाथ पैर भी टूटते हैं। लेकिन क्या गुनाह में अल्लाह ने हमारी आजमाइश के वास्ते ज़रा सा एक मज़ा रखा है, मीठा मज़ा, गुनाह में हमारी आजमाइश के वास्ते मज़ा रखा है अल्लाह ने, अगर ये मज़ा ना हो तो आजमाइश कैसे होगी, आजमाइश जब ही तो है। तो अब होता क्या है कि हमें मज़ा आता है तो हलाक कर देने वाली चीज़ों में मज़ा आता है, गुनाह गुनाह की हराम लफ्ज़ों में, लेकिन उनसे हलाक होता है। अब आदमी कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, तकवे से रहना और दीनी सोबतों में जाना, गुनाह से बचने का गम उठाना, इसमें तकलीफ होती है और ये कड़वी मालूम होती है, लेकिन भाई इस कड़वाहट में सारा मजा छुपा हुआ है, सारे शिफा छुपे हुए, दुनिया के भी, आखिरत के भी, चैन के भी, सुकून के भी। अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। तो अल्लाह का खौफ के बारे में हज़रत अली करम अल्लाह जो फरमाते हैं कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना मुबारक, इतना प्यारा है, उसकी मिसाल देकर फरमाते हैं, जब कोई बंदा किसी इंसान से डरता है तो उससे दूर भागता है। किसी इंसान के दिल में किसी का खौफ आ जाए तो वो डरेगा उससे, हटो बचो, कहेगा भाई नहीं, इनसे दूर दूर रहो, खतरनाक आदमी है, डरेगा। इंसान से डरा तो भागेगा, उससे दूर भागेगा। लेकिन जब किसी इंसान के दिल में जब अल्लाह का डर आता है तो उतना अल्लाह के करीब आ जाता है। बताइए क्या प्यारी बात फरमा रहे हैं हज़रत अली करम जो, कि कितना मुबारक डर है, कि जो अल्लाह का दिल जब डर में आता है तो वो भागता नहीं है अल्लाह से, बल्कि और करीब आएगा, और करीब आएगा, और करीब आएगा। ज़कात भी देगा, हज भी करेगा, सदकात खैरात भी करेगा, गुनाह से भी बचेगा, और फिर उसके बाद वो हराम अर्ज़ों का खून भी करेगा। हत्ता कि कहता है अल्लाह पाक इतना मैं तेरे करीब आ जाऊँगा, अल्लाह तू मेरी जान ही ले ले अब। मैं अपनी जान को तेरे सुपुर्द करता हूँ, अपनी जान को जाने जाना के सुपुर्द करता हूँ, फिर जान ही देता है वो। शहीद होते हैं ना ये बाज़ दफ़ा, ये वही तो होते हैं दीवाने, कि पता नहीं कितने मुजाहदात करते हुए आते हैं, आखिर में कहते हैं अल्लाह हम हैं कि आखिरी जान बची, अल्लाह ये भी तो तू ले ले अपने रास्ते पे, जब सब कुछ हमने तुझ पर वार दिया। ये कहलाता है इश्क, ये कहलाता है अल्लाह का खौफ, ये कहलाता है तकवा, दिल में डर। और अफसलम फरमा रहे हैं जब तक तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर रहेगा, ये जड़ है पूरे दीन पे अमल करने की, तुम बचे रहोगे गुनाहों से। अल्लाह का डर जब दिल में होगा, और जब ये निकल गया, फिर इंसान शैतान से बदतर है, जानवर से बदतर है। ये डर ही तो रोकता है इंसान को। तो अल्लाह वालों की सोबतें जो होती हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ हासिल होती है तकवा, और अल्लाह का डर दिल में आता है। बस ये चीज़ आ गई, बुनियाद आ गई, बेसिक आ गई, फिर आगे यही डर उसको खुद कंट्रोल करके, खुद मॉनिटरिंग करके लेके चलेगा। जब ये करो ये मत करो, हर वक्त शेख थोड़ी साथ चिपका हुआ बैठा हुआ है, शेख थोड़ी बताएंगे भाई ये करो ये नहीं करो, हर वक्त थोड़ी, हर वक्त तो अल्लाह की ज़ात बंदे के साथ रहने वाली होती है। लेकिन मिलता अल्लाह पाक जो अता फरमाते हैं मशाइख की बरकत से, सिलसिले की बरकत से अता फरमाते हैं अक्सर ये चीज़ें। तो अल्लाह का डर बड़ा मुबारक है। और इसी तरह अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के डर में, अल्लाह के खौफ में हज़रत अली करम अल्लाह जो फरमाते हैं दूसरी बात, कि अल्लाह के खौफ में और अल्लाह के डर में सारे अमन पोशीदा हैं, सारे चैन आफियत पोशीदा हैं अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के डर में। क्या प्यारी बात है, ज़रा गौर तो कीजिए क्या क्या कह गए ये भाई। कोई हर इंसान चाहता है ना मैं अमन से रहूं, चैन से रहूं, आफियत से रहूं, माली तौर पे कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई तंगदस्ती ना आ जाए, कोई मेरे हादसा मेरे या मेरे घर वालों के साथ ना हो जाए, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। तो क्या फरमा रहे हैं हज़रत अली करम, एक डर अल्लाह का अपने कल्ब के अंदर पैदा कर लो, इस एक डर में हज़ारों लाखों अमन पोशीदा हैं, अमन से रहोगे यहाँ भी और मरने के बाद आखिरत में भी। और ये एक डर निकाल दो, अब कोई गारंटी नहीं है ना दुनिया में ना आखिरत में अमन से रहने की। तो भाई कितना मुबारक डर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अल्लाह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि या ये बुजुर्गी फरमाते हैं या ये हदीस पाक का खुलासा अल्लाह कभी से माफ़ फरमाए, कि जो शख्स अल्लाह से डरता है उससे कायनात की हर शय डरती है। हर शय जो अल्लाह से डरता है यानी जो तकवे से रहता है, गुनाहों से बचता है, बार बार कहता रहता हूँ अल्लाह का डर से मुराद होता है गुनाह छोड़ना। वरना हर आदमी फासिक फाजिर भी ये दावा कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डरने वाला हूँ, ज़बान चलाने में गई मैं भी डरता हूँ, लेकिन हर दावा अपने पीछे दलील रखता है। डर से मुराद यहाँ है कि अल्लाह का ऐसा डर दिल के अंदर आ जाए कि वो गुनाह से बाज आ जाए, ये है अल्लाह से डरने का हक अदा करना, जिसको अरबी ज़ुबान में तकवा कहा जाता है। तो जो अल्लाह से डरता है तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हर मखलूक उससे डरती है जो अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसको फिर डराया जाता है, उसको हर चीज़ डराती है। फिर काली बिल्ली अगर रास्ते से गुजर जाएगी तो वो डर जाएगा, वहम में पड़ जाएगा, फिर वो छः फ़ोन करेगा, मैं आज दो दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है जब मैं बाहर निकलता हूँ एक काला बिल्ला सा आता है और मेरा रास्ता काट के जाता है, अब वो कहाँ पर है। वहम आएंगे, वहम ये अल्लाह की तरफ से अजाब होता है फासिक फाजिर गुनहगार लोगों के ऊपर, कि बिला वजह वजूद कुछ नहीं है किसी शर का, लेकिन उसको डराया जाता है। किस पादाश में जालिम, तू अल्लाह से नहीं डरता, अब तू बिल्ली से भी डरेगा, कुत्ते से भी डरेगा, छप्पलियों से अब तू डरेगा, क्योंकि तू अपने मालिक से नहीं डरता। कितने खवातीन के मेरे पास खुद फोन आते हैं, अरे वो कुत्ते को मैं देख रही हूँ, तीन दिन से कुत्ते में कुत्ते और बिल्लियां ही देख रही हूँ। कभी कोई खातून कहती है छपकली देख रही हूँ, कभी कहती है रोज देखती हूँ कि एक सांप हूँ और उसके बीच में फंसी हूँ। तो ये क्या है? मैंने कहा आप खा रही हैं पी रही हैं जी, नींद सही आ रही है जी, खुश हैं हस्ती बोल रही हैं जी, सब कुछ सही है। मैंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, आप सही है, मैंने कुछ तकलीफ वगैरह तो ये नहीं, मैंने कुछ नहीं है, आपकी इसलाह की नहीं, अल्लाह की तरफ से आपको डराया जा रहा है, अल्लाह का डर दिल में पैदा करें, ये अल्लाह का डर ना होने की अलामत है। शरीफ पर्दा करें, फजर की नमाज पढ़ें, किसी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासबत हो ताल्लुक कायम करें, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जब हम अल्लाह की तरफ नहीं आते तो मुख्तलिफ अल्लाह पाक की शान रहमत होती है कि हल्का फुल्का हमारी इसलाह के वास्ते डराया जाता है। कुछ नहीं तो वो दुश्मन पीछे लगा देते अल्लाह पाक, कुछ नहीं तो रॉन्ग कॉल्स आने लगती हैं। अब वो परेशान, वो बैठा हुआ है यार, दोपहर में भी आई, वो बंदा बोल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अब हफ्ते में दो तीन दफा ऐसा हो रहा है, अब वहमों में पड़ा हुआ है बेचारा, वो परेशान, यार पता नहीं मेरी तो किसी दुश्मनी भी नहीं है, ये कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। ये ऐसे ही नहीं होता, ये चेन सिस्टम अल्लाह पाक चला रहे होते हैं दिल में खौफ और डर पैदा करने की, नहीं क्योंकि वैलिम अल्लाह से नहीं डर रहा ना। अब तू मर, हर एक से डरेगा अल्लाह से नहीं डर रहा ना। जब दिल चाह नंगी फिल्म देखी, जब दिल चाह नाक झुकाने देख ली, जब चाह औरतों के साथ बदरवरी करी, अल्लाह का खौफ तो है ही नहीं। अब अल्लाह पाक उसके कल्ब के अंदर हजारों भरबार कर देंगे खौफ की। कुछ नहीं तो बीमारी का खौफ लग जाएगा किसी को कि यार मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। वो तेल भी प्लेट खाएगा तो यूँ करेगा, कभी टेढ़ी करेगा प्लेट को, कभी दाएं करेगा, तेल निकाल दूं, कहीं ऐसा ना हो तेल जो है मेरे हार्ट अटैक का जरिया बन जाए। अजीब अजीब बातें आएंगी, कभी फिक्र हो जाएगा यार अगर वह मर गया तो पैसे तो कम है तो घर वालों का क्या होगा। अजीब अजीब उसके जहन में वसवसे, फिक्रे, गम, तकलीफ और अजीब अजीब चीज़ें, पता नहीं किन किन चीज़ों से डरेगा। जो चीज़ हुई भी नहीं होगी उससे भी डरेगा, अगर ऐसा हो गया तो अरे भाई तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से लोग मिले कि जिन्होंने कहा फिक्र रह दी बीमारी ना हो जाए। किसी ने कहा जी मैं ज़बरदस्ती पेशाब कर दूँगा, एक डॉक्टर ने कहा था हर दो घंटे बाद पेशाब किया करो, गुर्दे की बीमारी नहीं होगी मसाने की। अब वो परेशान, बताइए आप, ये साहब है जानता हूँ, उनसे मुलाकात रहती, वो बता रहे हैं। अब वो अक्सर मेरे साथ होते हैं तो हर दो घंटे बाद कह रहा था अभी आया पेशाब करियो, मैंने कहा इतना पेशाब तो किसी को नहीं आता, मिला इलाज कराओ मसाने का, प्रोस्टेट वगैरह तो ख़राब नहीं है, क्या चक्कर है। कह रहे नहीं, वो एक डॉक्टर ने कहा था पेशाब आए ना आए हर दो घंटे बाद पेशाब करो, कभी तुम्हें पेशाब की बीमारी नहीं होगी। तो मैंने कहा इंसान तो बीमारियों का मजमू है, हज़ारों लाखों बीमारियाँ होती है, अगर एक बीमारी से बच भी गए बिलफर्ज तो बाकी बीमारियाँ भी तो हैं, अल्लाह ना करे वो हो गई तो फिर उसकी नहीं, तुम क्या कर रहे हो उसकी कोई एहतियात बताओ। कैंसर भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लाखों बीमारियाँ हम नाम भी नहीं जानते, तो भाई उससे किस तरह से बचेंगे। तो वो चुप। मैंने कहा भाई थानवी साहब रहमत इरशाद फरमाते थे किसी चीज़ का कबल वक्त वावीला करना इंतहाई मुझे रहे इंसान के दिल दिमाग के लिए, कि एक चीज़ हुई नहीं है पहले उसका वावीला किया जा रहा है। तो आज ये नफसियाती अमराज भी क्यों पैदा हो रहे हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से वसवसों में। आज लोग इतने घिरे होते हैं कि यार वसवसे ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, नमाज में, कुरान में, जिक्र में, अस्कार में, और चलते फिरते अजीब अजीब वसवसे आते रहते हैं। तो ये वसवसे साहबा कराम को भी आते थे, लेकिन उनके वसवसों में और हमारे वसवसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके वसवसे जो थे बड़े मुबारक थे, उससे तो उम्मत की इस्लाह और हिदायत मिल गई। एक साहबी रसूल आके कहते हैं या रसूल मुझे हर वक्त ये ख्याल आता रहता है, वसवसे आते रहते हैं कहीं मेरी जान को कुछ ना हो जाए, यानी कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं मेरी बीवी बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत परेशानी ना आ जाए, कि बीमार ना हो जाए, कहीं मेरी जो माली हैसियत है वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं मैं तंगदस्त और मोहताज ना हो जाऊँ, कहीं मेरे दीन पर कोई बुराई ना आ जाए, ये वसवसे आते रहते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया तुम सुबह शाम ये पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह आला दीनी व नफसी व वालदी व अहली व माली, अल्लाह के नाम की बरकत हो, बिस्मिल्लाह आला व दीनी, मेरे दीन पर, दीन फितनों से महफूज रहेगा। बड़ी प्यारी दुआ है, आजकल बड़े फितने चल रहे हैं दीन के नाम पर, गलत किसी बातिल गिरोह में फंस गया और हक समझते हुए मर गया तो गया पूरा ही काम उतर जाएगा। तो बिस्मिल्लाह आला दीनी, अल्लाह के नाम की बरकत हो मेरे दीन पे, अल्लाह पाक उसे सही दीन पे रखेंगे, सही अकायद सही अमाल पे, बिस्मिल्लाह दीनी व नफसी, मेरी जान पर, अल्लाह पाक उसकी जान को सलामत रखेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से इंशाल्लाह उसकी हिफाज़त फरमाएंगे, बिस्मिल्लाह दीनी व नफसी व वालदी, और मेरी औलादों पर, उसकी औलादे को भी अल्लाह पाक आराम से रखेंगे, व अहली, उसकी बीवी के ऊपर, अहल व याल पर, व माली, और उसके माल पर, अल्लाह के नाम की बरकत हो इन तमाम चीज़ों पर। ये पांच चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। वो साहबी रसूल फरमाते हैं कि दुआ की बरकत से अल्लाह ने सारे वसवसे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो हमारे जो वसवसे होते हैं भाई, वो तो गुनाहों की वजह से असला के वास्ते होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन वसवसे और मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ और डर होने की वजह से जो है वो दीन की तरफ आ गए, नमाज़ें शुरू कर दी, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम कर लिया। कोई दुश्मन पीछे लग गया, कोई जिन पीछे लग गया, कोई शैतान पीछे लग गया, किसी ने वहम में डाल दिया तुम पे, किसी ने सिफली करा दिया है ना, वो तुम्हारी जो फला रिश्तेदार है वो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, अब डर गए। वही बात कि अल्लाह से नहीं डर रहा ना, मुख्तलिफ चीज़ें डराएंगे अब, कभी जादू, कभी टोना, कभी फिर आमिल भी सही सही है, अल्लाह पाक उसको मिलाएंगे, जो आधी जान तो डरा डरा के निकाल देंगे, खून चूस लेंगे, उनको पता है अब तक डरेगा नहीं तो पैसे कहाँ से देगा। तो खूब वो हो, आप जिंदा कैसे हैं, मैं तो हैरान हूँ जिंदा कैसे, बड़ा ख़तरनाक किया, तो आपका तो पूरा पुतला ही गाड़ दिया कब्रिस्तान में। अब ये मैं तो भाई पैसे लेता नहीं हूँ, जो मेरे जो मुवक्किल है ना वो मांगते हैं खर्चा पानी। बताइए अब जिन्नातों को, मुवक्किलों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा ना हो मुवक्किल इसको ठोक दें किसी दिन, अबे हमारे नाम को बदनाम कर रहा है, हमें बदनाम करके और हमसे हमारे नाम पर पैसे पकड़ रहा, खा खुद रहे। वो चीज़ें सामान लाना ना, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, असली ज़ाफ़रान से तावीज़ लिखने, तो भाई आप ला दें ठीक है, ज़ाफ़रान के तावीज़ आप लिए, ये बोल दिया हमें कुछ नहीं चाहिए हम। अब ऐसा है कि आपको तो पहचान ज़ाफ़रान की होती नहीं है, बहुत से लोग वो उससे मिलती जुलती एक आती है कोई दवा, कुछ ऐसे फूलों की कलियां, तो उसका भी रंग ज़ाफ़रान जैसा होता है, तो आपको पहचान नहीं होगी। तो आप हमें पैसे दे दें, हमारे पास गारंटेड असली ज़ाफ़रान होती है। अब ज़ाफ़रान तावीज़ लिखना माशा तोला हज़ारों रुपये चल रहा है भाई, मैं पैसे नहीं लेता, वो तो ज़ाफ़रान के पैसे आपसे ले रहा हूँ। अब पहली बात, एक आदमी कह रहा है चलो यार मैं इनके पास फंस गया हूँ, काम कर रहे हैं बेचारे, तो यही चलो ज़ाफ़रान आप ही लेना फिर, तो सारी अगली पिछली कसर जो है वो ज़ाफ़रान की मद में ले ली जाती है। कहते ना जाहिद के जाहिद रहे हाथ से बोतल ना गई, है ना, जाहिद के जाहिद रहे हाथ से बोतल ना गई। तो ये लोग करते हैं इस तरह से, लेकिन जो चलाक लोग होते हैं भाई, वो होशियार जिनको अल्लाह ने शोर दिया समझ जाते हैं, लेकिन फंस चुके होते हैं, कहते हैं चलो काम तो करवाना है, तो वो दे देते हैं पैसे, तो उसमें उनकी अच्छा सारा सेटअप उनका चल पड़ता है। तो ये सब नक्शेबाजियाँ होती हैं, तो ये फिर फंसाया जाता है, फंसाया जाता है अल्लाह की तरफ से, जिन के चक्कर में, भूत के चक्कर में, क्योंकि ये आदमी डरता ही नहीं, बहन बेटियों को छोड़ दिया लड़कों के साथ पढ़ने के लिए, कोई एजुकेशन सिस्टम में बच्चियाँ बेपर्दा फिर रही हैं, काले टाइट पैजामे पहना दिए उनको, शॉर्ट कमीज़ें पहना दी, बाप भी जा रहा है भाई भी जा रहा है, बेगैरती उरूज पर है, कोई पूछने देखने वाला नहीं है, अल्लाह का डर ही नहीं है, अल्लाह का डर ही नहीं है। अल्लाह के डर पे एक और वाक़ याद आया, खान साहब थे जंगल में सो रहे थे आधी रात को, और सन्नाटा और वीराना है ना, तो एक कोई काफिला गुजरा, काफिले कुछ लोग, उन्होंने उठाया, अरे खान साहब हम तो यहाँ से इतफाक हो रहे, जंगल वीराना, बड़े बड़े अफधे सांप बिच्छू और शेर फिर रहे हैं, इतना ख़तरनाक जंगल, आप इतने आराम से सो रहे हैं, चादर ताने, आपको डर नहीं लगता इन जानवरों से? तो कहते अरे हम तो खुदा से नहीं डरता, हम जानवर से क्या डरेगा, है ना, हम तो खुदा से नहीं डरता, तो ये जानवरों से हम क्या डरेगा। तो ये तो बात मजाक की थी, लेकिन हकीकत यही है, मुंह से नहीं बोलते हम खुदा से नहीं डरते, मुंह से तो हम ये कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, लेकिन आदमी का हरकतें बताएंगी कि अल्लाह का डर उसके अंदर कितना है। अगर अल्लाह का डर होता तो बहनों की विरासत नहीं खाते, बेदीन लोग हम क्या बोले, बड़े बड़े बादशाह लोग, दाढ़ी टोपी भी होती है, दीनी मामलात भी उनके होते हैं, और अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जब पैसों का मामला आता है तो कलई खुलती है, वहाँ से पता चलेगा कितनी दीनदारी कितनी रसूख करी है दिल में, वहाँ फिर देखें वहाँ पता चलेगा कि बहनों को कितना कदा किया, बेटियों को कितना कदा किया, किसी की कर्ज उधार तो नहीं है, पैसा लेके खा गए हाजी साहब अलहाज साहब, गेटअप हुलिया बना के लोगों ने दे दिया, यार शरीफ नेक आदमी लग रहे हैं अल्लाह वाले, कमा के दूंगा। कितने फ्रॉड माशरे में हमें नज़र आते हैं सारे मामले, वजह क्या है, अल्लाह से, अल्लाह का डर दिलों से रुख्सत हो चुका है। अगर अल्लाह का दिल में डर होता तो ये मरीज मरीजों की सप्लाई नहीं हो रही होती, ये बीमार गोश्त नहीं खिला रहे होते, अल्लाह का डर होता है तो ये बेमानियाँ नहीं चल रही होती हैं, ये चाय की पत्ती में चना पीस के नहीं खिला रहे होते, कंकर पत्थर नहीं होते दालों में, ये बुरादा नहीं मिला रहे होते खुले जो मिर्च मसाले होते हैं, लाल मिर्चे पिसी हुई हल्दी, एक पूरा नेटवर्क है। अगर ये अल्लाह का दिल में डर होता तो ये डॉक्टर जो होते हैं कमीशन लेके, ये लोकल कंपनीज की घटिया दवाइयाँ लिख के नहीं दे रहे होते, ये नहीं कहते कि ये दवा आपको फिर नहीं मिलेगी मेडिकल स्टोर जो मेरे पास है और कहीं नहीं मिलेगी। ये वो लोग होते हैं जो भूल चुके हैं अल्लाह को, जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी कि मरना है एक दफ़ा, कब्र में उतरना है, जो करना है कर ले, आखिर मौत है, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह का दिल में डर नहीं रखते, भूल जाते हैं मौत को, हशर को, तो फिर अल्लाह भी दिलों पे मोहर लगाते हैं, तो खूब खा खूब ऐश कर, तेरा मेरा बस फैसला वहीं होगा। बाद दफ़ा अल्लाह पाक जब बहुत ही किसी पर गज़बनाक होते हैं, हदीस पाक का खुलासा है, तो उसको पाक करने के लिए अल्लाह पाक दुनिया में कोई मुसीबत को, बीमारी को, बला उस पर नाजिल नहीं करते, कहीं इसकी इस्लाह ना हो जाए, कहीं ये तौबा इस्तग़फ़ार ना करे, ये इसी हालत में मरे, तो अल्लाह पाक जितनी बदमाशियाँ करता है, जितने हराम काम करता है, हदीस पाक का खुलासा बता रहा हूँ, तो उतनी नेमतें अल्लाह की उसके ऊपर बरसती हैं। जितना बड़ा बदमाश, जितनी बदमाशियां, जितने गुनाह, जितनी हरामकारियां, उतने ऐश, हदीस पाक का खुलासा बता रहा हूँ। फिर होता क्या है, सबके साथ नहीं, जिन पर अल्लाह को गज़ब है, जिनसे बाज़ लोगों पर अल्लाह बहुत शदीद नाराज़ होते हैं, तो अल्लाह पाक उनको दुनिया में पाक करने का इरादा ही नहीं करते। इन चीज़ों से पाक होता है ना आदमी, परेशानी होगी तो गुनाह छोड़ेगा, रुजू अल्लाह होगा, दिल नरम होगा, अल्लाह चाह ही नहीं रहा। अल्लाह क्या चाह रहे हैं, आगे आप उसने इरशाद फरमाया, अल्लाह चाह रहे हैं इसी हालत में मौत आए, ताकि वहाँ 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 मौत के वक्त से तेरी धुलाई होगी ना, वो जब फरिश्ते पंजों से रूह खींचते हैं, हदीस पाक में आ चुका है कि पंजों से, मुल्मा कराम ने फरमाया, पंजों से रूह खींचते हैं और घुटनों से, टांगों से होती हुई, और फिर हलक के जरिए से मुंह के जरिए रूह निकलती है। मामूली बात नहीं है रूह का निकलना। तो अल्लाह पाक चाह रहे हैं यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ पाक करूँगा, वहाँ फिर जहन्नम कबर, जन्नत के बाग, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा, फिर जहन्नम में जलना, कितने स्टेज, बरज़ख के मामले कितने खतरनाक हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं जो बता दिया आप सल्लम ने, एक ये ख़तरनाक किस्म वाले वो लोग होते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ना यार, मैं तो ज़रा सा कुछ करता हूँ अल्लाह की पकड़ आ जाती है, मुझे तो गुनाह रास है ही नहीं, ये तो देखो उसको फना आदमी को, ये तो इतना बड़ा बदमाश है, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई अल्लाह से कह दो कि अल्लाह पाक मुझे उस जैसा आदमी बना दे, कह दो फिर। और दूसरी किस्म के कौन लोग होते हैं, जो प्यारे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, लेकिन फासिक फाजिर गुनाहगार होते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह उनको नहीं पसंद करता हराम कामों में, गुनाहों में ज़्यादा, एक हद तक अल्लाह पाक देखते हैं, अब नहीं मानता तो फिर अल्लाह पाक उसको हल्की भुल्की परेशानी मुबतला कर देते। ये प्यारे लोग हैं जिन पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह उनको अपनी तरह मुतवज्जा करने के लिए कोई हल्की भुल्की बीमारी दे देंगे, कोई तकलीफ दे देंगे, इस बहाने से वो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। ये अल्लाह के वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का फजल है। तो भाई हमें देखना चाहिए हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और हमारे मामला कैसे अल्लाह से होना चाहिए। एक शख्स था, नया नया मुसलमान हुआ, पहले गैर मुस्लिम था, वो यहूदी था गालिबन, जब मुसलमान हो गया, वो नया नया मुसलमान हुआ था, एक औरत आ रही थी सामने से, लड़की जो उसको अहदे जाहिलियत से पसंद थी, बहुत हसीन कोई लड़की थी, बदनजरी वो शख्स करने लगा और उसको गर्दन मुड़ मुड़ के देखने लगा, जैसे आज भी नौजवानों को, या बहुत से नौजवान के आज तो बूढ़े लोग भी बाज दिल जवान है ना, बूढ़े होने से क्या होता, बहरहाल तो वो घूरने लगे, जाते जाते उसको इतना, जब वो कहीं आड़ी टेढ़ी हो गई तो गर्दन वो मोड़ के घूरने लगे उसको, तो यहाँ तक कि वो दीवार पर टकरा गया अचानक। तो जब दीवार पर टकराया तो उनका गाल वगैरह को नाक छिल गई, लेकिन ईमान ला चुके थे, नए नए ईमान लाए थे, तो पहुँच गए असलम की दौलत कदे पे तशरीफ़ ले गए, और वहीं फौरन अपनी इस्लाह करा दी और बोल दिया, असलम कहते जाहिलियत में एक लड़की पसंद थी मुझे, दोबारा दिख गई, अब इस्लाम में तो ये चीज़ें हराम हैं, तो और मैं फौरन दीवार से टकराया और ये मेरा देखना भी छिल गया मेरा गाल। अब जवाब सुनिए, ये इसमें सब हम सब के नहीं, उसमें इसलिए फरमाया अल्लाह के मिशन, फरमाया जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसको नकद दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है, गलत बात है, जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसको दुनिया में नकद सज़ा मिल जाती है, यानी अल्लाह पाक कोई बार कोई मामला उसको आखरत के नहीं उठा के नहीं रखते, लेकिन भाई ये नकद सज़ा भी नहीं मिले अगर आदमी फौरन तौबा कर ले। बताइए आप, नकद सज़ा भी उन लोगों को मिलती है जो तौबा नहीं करते। तो भाई कितनी प्यारी चीज़ है कि भाई अगर कभी गुनाह हो जाए, तकवे से रहने की कोशिश करे, इंसान है, हो गई गलती, नबी होते हैं जो अम्बिया का जो मासूम होते हैं जिनसे गुनाह होता ही नहीं, बड़े से बड़ा कोई मुत्तकी अल्लाह वाला भी हो पुर खता होता है, वो ये नहीं कह सकते कि मासूम हो गए, वो अलग बात है, महफूज कर दिए जाते हैं अल्लाह वाले गुनाहों से। तो अगर कभी तकवा टूट जाए इंसान का, कभी इंसान है खता हो गई, कभी का लफ्ज़ याद रखिए, तो फिर आदमी तौबा कर ले, तो वो भी ऐसी है उसने गुनाह किया ही नहीं उसने, तो बात ख़त्म। तो कभी तकवा कभी तौबा, कभी तकवा कभी तौबा, दोनों रास्ते अल्लाह की महबूबियत के और अल्लाह की विलायत के, अल्लाह के प्यारे बनने के। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन का है ना अल्लाह पाक ने, कि मैं मोहब्बत रखता हूँ, प्यारा बना लेता हूँ किनको, जो लोग तौबा करते हैं, और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, मैं मोहब्बत रखता हूँ जो तकवे से रहते हैं, गुनाहों से करते हैं। ज़रा गौर तो कीजिए कितनी बड़ी अल्लाह की शान रहमत है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह हमारे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि देखो अल्लाह की महबूबियत के, प्यारा बनने के दो दरवाजे हैं, एक अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत रखता हूँ मुत्तकीन से, और मैं मोहब्बत रखता हूँ जो लोग तौबा करते हैं। दोनों मेरे प्यारे, यह रहमत नहीं है। फरमाए एक आदमी जो तकवे से रह रहा है वो जिस मुकाम पे पहुंच रहा है, एक आदमी जो फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, हराम लज्जत कशीद करता रहता है, गुनाह करता रहता है, लेकिन तौबा मुस्तकिल करता रहता है, गुनाहों से बचता है, डरता है, नादिम रहता है और तौबा कर लेता है। तो जिस मुकाम पे वो मुत्तकी पहुंच रहा है उस मुकाम पे वो गुनाहगार फासिक भी पहुंच रहा है तौबा के मुकाम से, जबकि उसने अपनी भड़ास निकाल ली है। दोनों अल्लाह के प्यारे बन रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आसान क्या तरीका? अब फरमाया, अब फिर हज़रत ने फरमाया, अब जो ना तकवा अख्तियार करेगा और ना तौबा करेगा, ना तकवा ना तौबा, दो चीज़ें बचाती हैं दुनिया और आखिरत में अल्लाह के हिसाब से, एक तकवा और दूसरी तौबा। अब जो ना तकवा अख्तियार करेगा ना तौबा करेगा, आदतन हराम कामों में लगा रहेगा, अब वो मरेगा। हज़रत ने जोश में फरमाया, अब उस पर अंदेशा है कोई बड़ा बला उसके ऊपर नाजिल होगी। फिर हज़रत ने बड़े दर्द से फरमाया, अरे कभी तकवा टूट जाए तो तौबा में देर क्यों करते हो? वो तौबा भी हज़रत ने फरमाया अक्सर लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि आगे के जो मज़े करने वो छूट जाएंगे। फिर हज़रत ने मिसाल दी कि अगर कोई जा रहा है गाड़ी में या बाइक पे, अब किसी चौरंगी पे लड़कियां खड़ी हैं, अब उसने बदनजरी उसने कर ली, अब दिल में आया मैंने तो गुनाह कर लिया, तो अब वो तौबा क्यों नहीं कर रहा? दिल में आएगा कि मैं तौबा कर लूँ, लेकिन फिर दिल में आएगा कर लेना कर लेना, इकट्ठी पहुँच के ऑफिस पहुँच के, यार अभी बीच में और माल भी तो खड़ा होगा, तौबा करेगा तो फंस जाएगा, तौबा करेगा तो फंस जाएगा, अगले स्टॉप पे चार छः और खड़ी हुई मिलेंगी, ऐसा कर तू ऑफिस पहुँच जाना, आराम से पहुँच के कर लेना। तो शैतान का बड़ा ख़तरनाक हथियार होता है। शैतान भी 70,000 से ज़्यादा नूरानी दवा होते हैं, वो ये नहीं कहता कि तुम तौबा करो, तौबा मत करो, कहेगा हाँ गलत किया तुमने, तौबा करना करना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और फिर कभी नहीं, फिर मौत का वक्त आ जाता है। टालता रहता है, टलाता रहता है शैतान इन चीज़ों को। तो इसलिए बहुत से लोगों को अगली एपिसोड में हराम मज़े करने होते हैं अगली किस्त में, इसलिए बहुत से लोग इसलिए तौबा नहीं करते कि यार तौबा करेंगे तो फंस जाएंगे। तो अल्लाह ये मक्कारियाँ देख रहे होते हैं। अल्लाह तो फरमाया ना, अल्लाह ने, मैं तो तुम्हारी रगे जाँ से भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम बोलते नहीं हो, तुम वसवसा भी आता है, मैं सब देख रहा होता हूँ, सब सुन रहा होता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो अल्लाह पाक देख लेते हैं कि इसको दीनी शऊर भी हासिल हो चुका है, ये होशियार भी है, इसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है और मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, और इन बातों पे मेरी पकड़ भी आ सकती है, लेकिन ये जानबूझ के अवॉइड कर रहा है तौबा को, ये जानबूझ के तखवे को अवॉइड कर रहा है, दरगुजर कर रहा है, ये सब कुछ समझ रहा है, मुझे मेरे दिल में डर भी रख रहा है, आर भी डर इसको, उसको ज़मीर की मार भी पड़ रही है, लेकिन मुझे इग्नोर कर रहा है। ये समझ के भी ना समझ नन्ना काका बना हुआ है, कहते ना समझ के भी ना समझ बनना, समझ गया लेकिन शो ये कर रहा है कि मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन अल्लाह को सब पता है कि ये क्या समझा, अल्लाह को सब पता है कि क्या ये समझा। तो फिर जब अल्लाह देखते नहीं, अब बेटा, फिर अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे अब तू मक्कार बन गए, अब तू मक्कार इंसान बन गए, और तू भोला भाला आदमी नहीं रहा, तू जानबूझ के दरगुजर कर रहा है, और तू हिदायत की पट्टी पे नहीं आ रहा, ना तू तकवा अख्तियार करता है, ना तू तौबा अख्तियार करता है, और आदतन रोज़ाना हराम कामों में जो तेरी डेली की रूटीन है तू वही कर रहा है। फिर अल्लाह पाक हमारे तस्किए के लिए, हमें गुनाहों से पाक साफ करने के लिए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को परेशानी भेज देते हैं। तस्किए किसे कहते हैं? पाक करना गुनाहों से। तो फिर परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, बलाएं, ये हमारा तस्किया करती हैं, पाक करती हैं गुनाहों से, क्योंकि हम तौबा से पाक नहीं हो रहे होते, हम तकवे से पाक नहीं हो रहे होते। जो अपना तौबा करेगा ना तकवे से रहेगा, तो फिर याद रखिएगा फिर परेशानी और मसाइब आके उसको पाक करेंगे, ये बड़ी तकलीफ दे खतरनाक चीज़ है। तो जो अल्लाह पाक ने सहल और आसान चीज़ें बताई हैं पाक साफ करने की, तौबा इस्तग़फ़ार आदमी कर ले, तकवे से रहने की कोशिश कर ले, शेख से इस्लाह करा ले, जो लोगों ने कुछ शेख से अगर बैत है, तो बैत होने का मकसद ही यही होता है हाथ में हाथ देने का, कि जो मेरी गंदगी होंगी जिनसे मैं नहीं निकल पा रहा कोशिश के बावजूद, अपने शेख को बताऊंगा, तो अल्लाह वालों की दुआएं होती हैं, तवज्जोहात होते हैं, उनके मशवरे होते हैं, फिर उनको अपने हाल की इत्तला देते रहता है, इंशाल्लाह वो मर्ज निकल जाएगा गुनाह का जिसमें उसको आदत पड़ी हुई, तो चंद दिनों में इंशाल्लाह उसका वो गुनाह निकल जाएगा, तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएगा। जो आदमी खुद इस्लाह के प्रोसेस में लगा रहता है, तो अल्लाह पाक उसकी इस्लाह नहीं करते, अल्लाह को पता है मैं इस बेचारे की इस्लाह क्या करूँ, ये तो खुद परेशान और अपनी इस्लाह की भाग दौड़ में खुद लगा रहता है, तो अल्लाह का तकवीनी निज़ाम हरकत में नहीं आता। सख्ती वाला अल्लाह की तरफ से सख्तियाँ, परेशानियाँ, बलाएँ सख्त आती हैं जब हम लोग अपनी इस्लाह छोड़ देते हैं, इस्लाह की फिक्र छोड़ देते हैं, तौबा छोड़ देते हैं, तकवा छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को कटी पतंग की मानिंद बना लेते हैं। कटी पतंग होती है ना, कट गई कैसी बे यारो मददगार चलती हुई नज़र आती है। तो हज़रत वाला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का पता चल जाता है, हज़रत की अल्लाह कबर को नूर से भरे, अजीब हज़रत ने मिसाल दी कि देखो जब कोई पतंग आसमानों में उड़ रही होती है और तुम्हें पतंग उड़ाने वाला नज़र नहीं आता, लेकिन पतंग की रफ्तार देख के तुम बता दोगे उसकी डोर किसी के हाथ में, तो मैं पतंग उड़ाने वाला नजर ना है, वहरी बात है नजर तो पतंग दूर दूर उड़ रही होती है, लेकिन हमें पता होता ही है इसका कोई उड़ाने वाला है, डोर किसी के हाथ में, उसकी रफ्तार उसकी चाल उसका इत्मीनान पतंग का बताएगा, सुत होगी वो पता है। और जब वो पतंग का उस उड़ाने वाले से राबता खत्म हो जाता है, जब वो कटती है तो उसकी चाल बता देगी, दुनिया कह देगी ये पतंग कट गई, फिर बच्चे और लड़के इसके पीछे दौड़ते हैं लूटने के लिए, फिर वो पतंग तो क्या हाथ में आती है, उसके परख चोड़ जाते हैं, फिर वो फट जाती है पतंग, तो कटी पतंग के पीछे लूट का माल लग जाता है। और जो आसमानों में ऊपर उड़ रही होती है पतंग, उसकी चाल बता देती है, इसका राबता किसी उड़ाने वाले के साथ है। तो हजरत ने फरमाया बास बंदे होते हैं अल्लाह का उनसे राबता होता है, तो लोग भी देख के कहते हैं इसके दिल में मौला है, उनकी चाल ढाल उठना बैठना गुफ्तार रफ्तार बता देती है कि ये खाली नहीं है, इसका ताल्लुक अल्लाह से, ताल्लुक नस्बत अल्लाह का मोती इसके कल्ब के अंदर छुपा हुआ है, उनकी बातचीत उनकी चाल ढाल से उनके नशीब बरखास्त से पता चल जाएगा, कल्ब में ये मोती रखते हैं नस्बत माल्ला का, सुकून का, इत्मीनान का, इनका ताल्लुक वाकई अल्लाह तबारक ताला के साथ है। और जो बंदा अल्लाह से जो जिसका राबता कटा हुआ होता है, उसकी मानिंद कटी पतंग की होती है, वो बदहवास होगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में होगा, अजीब अजीब हैकी पैकी बातें करेगा, वो उसकी बातों में रब्त नहीं होगा, कभी कहीं की बात करेगा, कभी कभी कहीं की बात करेगा, अजीब व गरीब उसकी कैफियत होगी, उठने बैठने से बातचीत से पता चल जाएगा इसका राबता अपने मौला से कट चुका है, ये कटी पतंग की मानिंद हो चुका है, इसको दुनिया लूट और खसोट करने के चक्कर में इसका कोई नहीं है बेयारो मददगार, जैसे आवारा गली का कुत्ता होता है सब पत्थर मारते हैं, उसकी हैसियत ऐसी हो जाती है जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिस कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता उसको केएमसी वाले भी कुलचा जहर दे के मार देते हैं, पहले अब तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने कुत्ते को मारने की मुहिम, लेकिन पहले क्या होता था, पहले केएमसी की तरफ से ऑर्डर आते थे कि जिनके पालतू कुत्ते हैं उनके गले में पट्टा डाल देता कि पहचान लिए जाए कि इनका कोई मालिक है, तो उनको जहर नहीं दिया जाएगा, और जो बगैर पट्टे के मिलेंगे उनको जहर देकर मार दिया जाएगा। तो फिर जितने भी कुत्ते होते थे जिनके पालतू कुत्ते, पर सब अपने कुत्तों के गलों में पट्टे डाला करते थे ताकि निशानदेही रहे कि इनका कोई मालिक है। तो जब दुनिया में कुत्तों की हिफाजत हो रही है, तो जिसका वो मालिक है जब उससे राबता भरा के रखेगा तो क्या उसको कोई मार देगा ना, उसको शैतान उसको जमाने के हवादिस मान देंगे, कुत्तों तक की तो हिफाजत कर रहे हैं, जबकि हमें खुद हिफाजत की जरूरत है, एक इंसान कुत्ते की हिफाजत कर रहा है, कुत्ता मरने से बच रहा है, तो मालिक जिसकी हिफाजत करने पर आ जाए और उसके हमारे गले गर्दन में अगर तकवे का पट्टा आ गया तो हमें कौन हलाक कर सकता है, न जहन्नम की आग जलाएगी ना दुनिया की आग जलाएगी इंशाल्लाह, अगर आग होगी भी तो वो गुले गुलजार बना दी जाएगी, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था कि कून बरदम सलाम अला इब्राहिम, या ना रुकूनी बरदम सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा, ये नहीं कहा कि आग के ये हट जाए खत्म हो जाए, नहीं, आग उसी को वैसे जलने दिया, पता कैसे चलता उनके ताल्लुक माल्ला का, किस मुकाम के ये मेरे नबी हैं, किस मुकाम के मेरे खलील हैं, अल्लाह को काफिरों को दिखाना था, आग के अंदर डाला, आग जल रही है और मुस्कुरा रहे हैं आग के अंदर, और फिर कहा बादशाह से और तमाम लोगों से, दुश्मन आओ ये मेरा रब आओ, एक एक करके लोग अंदर आग के अंदर आए, एक आया दो आया तीन आया चार आया, आग ने किसी को नहीं जलाया, ईमान लेकर लोग आ गए, ये होते हैं अल्लाह के आशिकीन, ये होता है जिनकी गर्दन में अल्लाह का पट्टा होता है, तकवे का पट्टा होता है, अल्लाह उनको ऐसी ज़ाया नहीं होने देते, और जब दुनिया में रहना उनका अच्छा नहीं होता तो फिर अल्लाह पाक अपने प्यारों को उठा लेते हैं, मेरे बंदे प्यारे बस जितना तुझे रहना था रह लिया, अब दुनिया इस काबिल नहीं रही कि तुझ जैसे लोग यहाँ पे रह सके, तो आ मैं अब तो तुझे जन्नत की बाहरें दिखाऊं, वहां की ऐश कराऊं अपने कुर्ब के, फिर अल्लाह पाक उनको उठा लेते हैं सही वक्त के ऊपर, क्योंकि उनका मालिक उनके साथ होता है, उनका मालिक उनके साथ होता है। तो कहाँ से बात चली थी भाई कि आदतन किसी गुनाह में मुब्तला ना रहें, आज हमारे माशरे के अलमिया है कि आज शादी हॉलों में जाके देखें, लॉनों में जाके देखें, बैंक्वेट्स में जाके देखें, बुजुर्ग लोग बादशरा लोग 70-70 साल के 80-80 साल के सहारे से लोग पकड़ के आ रहे होते हैं, उनकी जो जो लाठियाँ होती हैं वो हिल रही होती हैं, वो कांप रहे होते हैं, देख मूवी तस्वीरें बना रहे हैं बैठे औरतों के साथ बैठे हैं, अरे भाई मरना है, खुदा को जवाब देना है, कौन इसलाह करेगा, किस तरह से इसलाह होगी भाई, एक वक्त तक कर लिए ऐश कर लिए हराम मज़े कर लिए हराम मज़े कर लिए गुनाह के मज़े कर लिए, हराम हलाल सारे मज़े अल्लाह ने हलाल कराए अल्लाह ने, लेकिन हराम तो हमने खुद चखे, तो हमने तो ना हलाल मज़े छोड़े ना हराम छोड़े, सारी मज़े हमने कशीद कर लिए, लेकिन बस 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 भाई अब उम्र हो गई, अब फिर हलाल मज़े उठाएं हराम मज़ों को छोड़ दें, एक वक्त होता है नौजवानी का लड़प्पन का बचपन का शहवत का, उम्रे हो गई अब तो भाई हम लोग बाज आ जाएं, कब तक कब तक कब तक कब इसलाह होगी। बैत भी बाज लोग हो जाते हैं, 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं बैत हुए हुए, लेकिन तकवे के मामले में नन्हे काके बने होते हैं, तकवे की तरफ फिर भी नहीं आते, उनकी भी फिक्र होती है। बहुत से लोग मुखलिस थोड़ी होते हैं, अल्लाह वालों के पास आते हैं बाज लोग, ताल्लुक कायम कर लेते हैं, दुनिया छुपी हुई होती है, बीमारी ख़त्म हो जाए, बला ख़त्म हो जाए, मुसीबत ख़त्म हो जाए, पैसा आ जाए, बस भाई मना नहीं है इस चीज़ों की भी है, लेकिन अल्लाह वालों से अगर अल्लाह नहीं हासिल किया, तकवा हासिल नहीं किया, तो सख्त महरूमी की बात होगी। ये अगर अभी पता नहीं चल रहा तो फिर सकरात के वक्त पता चलेगा, जब नज़ा का आलम शुरू होगा। जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे अल्लाह नहीं मिला उसे सब कुछ मिल गया तो भी उसे कुछ नहीं मिला, उससे बड़ा कोई खसारे में कोई नहीं होगा जब वो खाली हाथ दुनिया से जाएगा। और जो खुदा को साथ लेके मरता है उसकी उसको उसकी जवानियों का मत पूछो, उसकी हयात जाविदानी का कोई ना पूछे कि क्या अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं जो अल्लाह को साथ लेके मरता है। मजा तो तब है इंसान मरने के बाद, तो सभी अल्लाह तक पहुंचते हैं मरने के बाद, वफात इंतकाल क्या है, मरने के बाद जो अल्लाह तक जाना है तो मजबूरी का जाना है, उस पर कोई अजर व सवाब नहीं है कि आप मर गए लो जी ऐश करो, वो तो अमाल का हिसाब होगा, मरने पे अजर नहीं है ना, कोई फ़ायदा है मरने के बाद अल्लाह तक पहुंचने का, वो तो मजबूरी का अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह की पहचान हुई मरने के बाद तो क्या फ़ायदा, कोई उस पर अजर कोई फ़ायदा नहीं है। मफ़त तो तब है जीते जी खुदा तक पहुंचे हम, जिसे मार्फत कहा जाता है, जिसे पहचान कही जाती है, हम कहते ना मार्फत, मार्फत किसे कहते हैं, मार्फत इलाहिया, मार्फत कहते हैं अल्लाह की पहचान को। मरने के बाद धुलाई पिटाई के बाद अल्लाह सामने आया तो क्या मार्फत हासिल की, क्या अल्लाह की पहचान हासिल करी, अब मार्फत हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तो तब है जीते जी हम खुदा तक पहुँचें, जीते जी खुदा की पहचान हम करें, तो फिर मज़ा है दोनों जहाँ में। और फिर जीते जी लोग खुदा को पहुँच रहा है वो कमाल है, वो है मामला, वो है मार्फत, वो है पहचान, जीते जी खुदा तक रसाई हासिल हो गया, ऐसा ताल्लुक माल्ला हासिल कर लिया बबरकत तकवा, बबरकत सोबत सालहीन, बबरकत वसीला शेख, अक्सर सुन्नतुल्ला यही रही है। इस पर इस मौजू पर मेरा एक शेर मुझे याद आया, बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, जीते जी जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती, बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे। भाई उसमें क्या कमाल है, सब आमने सामने होंगे, तजल्ली खड़ी होगी अल्लाह के सामने, हम हाजिर होंगे और अल्लाह पाक हमारा नामामाल, हर बंदे का नामामाल हाथ में होगा और उस वक्त अल्लाह पूछेंगे हमसे सवाल जवाब, तो वो रूबरू हुए तो उस वक्त का तो बड़ा ख़तरनाक वक्त होगा। बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती, कि मौत भी नहीं आएगी हमें इंशाल्लाह उस वक्त जब तक हम अल्लाह को पाके नहीं रहेंगे, ये होते हैं अल्लाह वाले। अब इस पर हजरत वाला की ये जज्बाती शेर नहीं, अल्लाह ने बनवा दिया लेकिन अभी दिल में आ रही है इसकी तशरी, हजरत की बरकत से अल्लाह पाक दिल में डाल रहे हैं कि यही हमारे शेख का हाल था। हजरत जो थे वो चाहते थे कि मेरा जो इंतकाल हो वो पीर वाले दिन हो, क्यों कि आप सल्लम की वफ़ात भी पीर वाले दिन हुई थी, तो पूरी ज़िंदगी सुन्नतों पर अमल करते रहे हजरत, तो हजरत की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ने अपनी तौफीक से मुझे इख्तियारी सुन्नत पर तो अमल करने की तौफीक अता फरमाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रसूल अल्लाह में की ज़ात में ऐसा मैं फना हो जाऊँ कि मेरी मौत भी पीर वाले दिन आए जो मेरे इख्तियार में नहीं है। ये कहलाती है गैर इख्तियारी सुन्नत, गैर इख्तियारी सुन्नत भी अदा हो गई। तो फिर इंतकाल से पहले हजरत वाला रहमतुल्लाह बोल नहीं सकते थे, बीमार थे, बहुत निकाहत थी, बहुत कमज़ोरी थी, सामने घड़ी हजरत के दरवाजे जो बेड के सामने घड़ी लगी थी वॉल क्लॉक, और हजरत के आंसू टपकते रहते थे, इशारे से पूछते थे आज दिन क्या है दिन। तो इंतकाल से चंद दिन पहले हजरत का मामूल था, रोज़ पूछते थे पाबंदी से, एक हफ्ते तकरीबन चंद दिन पहले, तो किसी ने बताया मंगल, तो हजरत ने कहा नहीं, इशारे में कह रहा नहीं। अब जो ख़ास समझते थे कि क्या हजरत इशारा क्या किया किस चीज़ का, और फिर हजरत ने सुन के गर्दन क्यों लाई, मतलब ये था कि अभी मेरी मौत नहीं आएगी, मंगल है आज, मामूली बातें नहीं होती हैं। फिर उसका अगले दिन फिर पूछा, फिर बताया बुध, फिर मुतमईन हो गया अभी नहीं मर रहा, नहीं जा रहा आज, मेरी फ्लाइट नहीं, नहीं जा सकता। फिर उसके बाद पीर वाले दिन, फिर अगर जिस दिन इंतकाल था इतवार वाले दिन, मगरिब के बाद चूंकि दिन चेंज होता है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से, तो इतवार की सुबह हजरत ने पूछा अपने ख़ास खादिम से कि आज दिन क्या है, तो बताया आज इतवार का दिन है। फिर हजरत ने गर्दन नहीं हिलाई, अब हजरत के बस आंसू टपके ऐसे, और फिर हजरत ने ऐसे एक हाथ पे तो फालिज गिरा था, हजरत ने हाथ यूँ उठाया एक हाथ दुआ मांगने लगा और फिर चेहरे फेर लिया। फिर उसके बाद इतवार का दिन गुजरा, इतवार की मगरिब की जब जमात हुई है वहीं मस्जिद में खानका में, और जब सलाम फेर के हम लोग अंदर गए तो 10 मिनट के बाद तलाई व्रत का इंतकाल हो गया। यानी वो इतवार वाला दिन मगरिब के बाद शबे पीर में दाखिल हुआ तो फिर मौत अल्लाह ने दिए। ये कहलाते हैं अल्लाह के आशिकीन, जीते जू जीते जीतू कैसे मिले, ये आरजू मरने नहीं देती, मरने नहीं देती। ये अल्लाह का फजल होता है कि ये मेरा आशिक है, ये पीर को मरना चाह रहा है, ये पीर को जान देना चाह रहा है अपने नबी के इश्क में। तो अल्लाह भी कहते हैं ठीक है ले मेरे बंदे, है ना। ये आशिकीन के मामला कुछ और होते हैं। हजरत फरमाते थे पीर के दिन की मौत मांगना ये आशिकीन का काम है और जुमे के दिन मौत मांगना ये खाइफीन का मुकाम है। खाइफीन खौफजदा लोगों का, डरे हुए लोगों का, भाई जायज़ है, अच्छी चीज़ है, जुमे की बड़ी फजीलत है, लेकिन हजरत का एक इश्क था है? हमारी भी ख्वाहिश यही होती है, हम तो अपने दिल का हाल बोल रहे हैं, जुमे के दिन मांगते हम पीर के दिन नहीं मांगते, क्योंकि भाई हमारा वो मुकाम नहीं है, हजरत का तो बहुत ऊँचा मुकाम था, हमें तो डर लगता है अपने अमाल से। जुमे के दिन की क्या खसूसियात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, अल्लाह का मीशीमा फरमाए, जो जुमे के दिन इंतकाल करता है ईमान वाला तो उसका कब्र में हशर में क़यामत वाले दिन कहीं कोई किसी किस्म का कोई सवाल जवाब नहीं है, ना मुनकर नकीर आते हैं, ग्रीन चैनल के जरिए से सामान निकलता चला जाता है ना, हिसाब किताब ही नहीं होता, बताइए आप, एग्जम्पशन एग्जम्प्ट हो गए सारे मामला, बताइए क्या प्यारे दिन जुमे की मौत है। और जब हशर वाले दिन जब अल्लाह के आगे जब वो खड़ा होगा, जिसको खड़ा किया जाएगा, तो उसकी कमर के ऊपर शोहदा की मोहर लगी हुई होगी। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, मीर साहब से सुना हदीस शरीफ का खुलासा, कि उसकी कमर के ऊपर शोहदा की मोहर लगी हुई होगी कि शहीद मरा है, बताइए क्या बचा, क्या बचा। तो जुमे की मौत अक्सर हम लोग मांगते हैं, हम खुद अपने लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह जुमे की मौत अता फरमाना, हिसाब किताब हो ना सवाल जवाब हो, और फोकट के मुफ्त के सारे हमें बेनिफिट मिल जाएं। लेकिन भाई ये वो तो आशिकीन होते हैं। अब हजरत का मुकाम ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हजरत जुमे का दिन भी नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मुझे सुन्नत चाहिए, सुन्नत अमल, मौत भी मेरी सुन्नत के मुताबिक हो पीर वाले दिन की। तो ये बड़े ऊंचे बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं भाई, वरना पाखंडी लोग जो होते हैं वो दुनिया में तो खूब शोबदेबाजी कर लेते हैं, लेकिन वो पीर के दिन की मौत हर कोई नहीं मांगता, वही मांगेगा जो जिसका कोई मुकाम होता है, जिसको अल्लाह पाक जन्नत जीते जी दिखा देते हैं, उसको अपना मुकाम दिखा देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह आफियत वाला हूँ सारा, बस चूँकि मज़मीन तो भाई अभी और आ रहे हैं, लेकिन अब चूँकि 1 घंटा हो चुका है तो अब बयान को मौकूफ़ करते हैं। बस इस बयान का खुलासा ये है कि आदतन किसी हराम काम में उबतला, किसी गुनाह के काम में उबतला ना रहे। अब लोग कहते हैं जी नफ्स और शैतान बहका देते हैं, अल्लाह ने तो नफ्स रखा है, तो अल्लाह ने तौबा भी तो रखी है, अलहमा फजूरहा व तकवाहा, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने तुम्हारे अंदर फजूर का, गंदगी का, गुनाह करने का तकाजा भी रखा है, व तकवाहा गुनाह से बचने का, तकवा का भी तो मादा रखा है, तो दोनों चीज़ें रखी हैं। तो भाई अगर कोई गुनाह नहीं छूट रहा हो, कोई बैत होना भी ज़रूरी नहीं है इस्लाह कराने के लिए, इस्लाह कराने के लिए बैत होना ज़रूरी नहीं है, वो तो ज़ालिम पीर है जो कहे तुम बैत नहीं हो तो इस्लाह नहीं करूँगा, वो तो दुनिया परस्त आदमी है। और किसी बैत होना तो सुन्नत है, नूर आला नूर बहुत प्यारी सुन्नत है, सिलसिले की बरकत मिलती है, लेकिन खाली सुन्नत है बैत होना। लेकिन किसी अल्लाह वाले से या उसके ग़ुलाम से इस नीयत के साथ इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना कि मेरी ज़िंदगी से गुनाह निकल जाए, उलमा कराम फरमाते हैं फ़र्ज़ ऐन है नमाज रोज़े की तरह। तो भाई इस्लाही ताल्लुक़ लाजमी रखना है हर मुसलमान को, चाहे वो बैत हो नहीं हो, कि किसी गुनाह में मैं आदतन मुबतला ना रहूँ, बस इस फिक्र के साथ, तो इंशाल्लाह दुनिया भी उसके लिए बाहरी बाहरे बन जाएंगी, अल्लाह पाक गमों को परेशानियों को दूर करेंगे, उसकी फिर हाजतें पूरी करेंगे, उसकी तकालीफ़ को दूर करेंगे, सही है ना। और आमिलों से बचें, लोग चाहते हैं मैं बदमाशी वाली ज़िंदगी गुजारता रहूँ, हरामकारी करता रहूँ, को परेशानी आ जाए तो किसी आमिल के पास जाके ताबीज़ गंडा झाड़ा फूँक करके और फिर मैं अपना मसला हल करवा लूँ, तो ऐसा होता नहीं है। बहरहाल अगर किसी को शक हो इन बातों में तो आजमा के देख लो, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। बाकी अगर कोई मसला हल हो भी गया आमिल के पास से, तो फिर 6 महीने नहीं गुजरेंगे, अगर वही हराम काम चलता रहा तो फिर दूसरी बला खड़ी होगी, फिर उसके लिए एक तावीज़ लेकर आओ, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर तीसरी बला खड़ी होगी, तो ये ख़त्म सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो वो सुराखी बंद कर दो ना तकवे से, जहाँ से ये बलाएँ निकल निकल कर आ रही हैं, तो कितने तावीज़ लोगे, कितने आमिलों के जाओगे, कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यहाँ तक फरमा दिया कि तकवे की बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती, क्या तुम इतनी सी अकल नहीं रखते। اس طرح سے فرما رہے ہیں تعقلون کہ عقل نہیں رکھتے اتنی سی بات کہ تقوی ہر حالت میں تمہارے لیے شاندار ہے، یہ تمہاری کھوپڑی میں عقل میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ کس کس طرح سے اللہ نے تقوی کے بارے میں سمجھایا. بہرحال حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے پانچ اعمال بیان کر دیے کرو، بہت ضروری ہیں. ان کا پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال سے، جو چھوٹا کتاب چھپی ہے، اور ان کا تعلق فرائض اور واجبات سے، نفلی اعمال نہیں ہے. قرآن پہلا جو ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، وہ رکھیں تینوں طرف سے، مونچھیں بالکل باریک رکھیں واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا. تیسرا عمل ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھیں، ما اسفل من القابین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں تو دونوں صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، بیٹھے لیٹھے ہوں تو بھلے چھپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں اور خیال کریں نماز کے علاوہ بھی ٹخنے کھول کے رکھیں، اور خواتین کے ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے. تو آج کل الٹا دور آ چکا ہے، جو مرد ہیں وہ ٹخنے چھپاتے رہتے ہیں، خواتین پنڈلیاں کھولتی جاتی ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور چوتھا عمل نظروں کی حفاظت کریں، تمام مردوں سے یعنی جو مرد ہیں وہ تمام عورتوں سے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور خواتین کو اللہ پاک نے الگ سے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی تمام نامحرم مردوں سے نظروں کی حفاظت کریں. اور یہ ایک حکم نہیں ہے قرآن پاک میں نظروں کی حفاظت کا. دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا یا علم و خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، کہ اللہ پاک جو ہیں وہ آنکھوں کی خیانت کو خوب دیکھ رہے ہیں، کہ تم بد نظری کرتے ہو اور پھر اس کے بعد دل میں گندے خیالات پکاتے ہو. پہلے کیا مطلب، موبائل پہ پہلے گندی چیزیں دیکھتے ہو پھر اس کے بعد تم مزے لیتے ہو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وما تخفی الصدور، یہ سینوں کے جو راز سے تک میں واقف ہوں. اللہ سزا کی بات نہیں کر رہا، ڈرا رہے ہیں، وہی بات کہ ڈر پیدا کرو، میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ بول نہیں رہا میں، تو بعض آ جاؤ ان حرکتوں سے. تو اور یہ نظروں کی حفاظت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بدعا دی ہے، لعن الناظرہ منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے، اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمائے کہ تم لوگ یا تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے اور نظروں کی حفاظت کرو گے، نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. یعنی وارننگ فل اینڈ فائنل کہ اپنی شرم گاہ اور نظروں کی حفاظت کرو، نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کا مسخ کر دیا جائے گا. تو یہ تھرڈ ڈگری ہے. تو اللہ بچائے بد نظری سے، کبھی ہو جائے تو توبہ کر لیں. اور پانچ عمل دل کو پاک صاف رکھیں، گندے خیالات دل میں نہ پکائیں، اس سے چاروں عمال سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. کبھی شیطان اگر دل میں وسوسے ڈالے تو کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں، وضو کر لیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں، گھر سے باہر چلے جائیں، تو کیفیت ختم ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے لانا دل میں جمانا یہ صحیح نہیں ہے. دل کو پاک رکھیں، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، گندے ناپاک نجس دل میں اللہ پاک نہیں آتے، ٹھیک ہے. اور ان پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے اور یا ان کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا رحم الرحیم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما. اللہ یا رب کریم حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اللہ ہم سب کو صحیح کامل تقوی عطا فرما دے. یا اللہ تعلق ماللہ نسبت ماللہ عطا فرما دے. نفر معاشرے سے کے خلاف جانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. جو گناہ ہمارے جو معاشرے میں گناہ پھیل چکے ہیں، ان کا حصہ ان کا ہمیں حصے دار بننے سے بچا لے. اللہ ان گناہوں کی اور ایسے گناہوں کے کاموں کی مخالفت کی ہم کو خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بے پرواہ کر دے سارے جہاں سے، اپنی ایسی خشیت محبت الہیت عشق ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا سے اسک اٹھانا جب تو ہم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما جنہوں نے رفع میں اللہ پاک پناہ لی ہوئی ہے. وہاں پر یہ خبیث یہودی ان کو حملے کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. اللہ ہر فلسطینی کی حفاظت فرما. یا رب کریم اللہ پاک یہ جو हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और जितने भी ये दुकानदार हैं जिन्होंने यहूदियों के शोकेस रखे हुए हैं, उनके फ्रिज रखे हुए हैं, उनकी प्रोडक्ट और बेतहाशा बेचना और किसी तरह तैयार नहीं है अल्लाह पाक वो इन चीज़ों को छुटकारा नहीं हासिल उनको हो रहा और छोड़ नहीं रहे इन चीज़ों को 2% के पीछे। अल्लाह ऐसे क्या बोलें, बस अल्लाह पाक ऐसे गैरत से खाली और मौत और कबर को भूले हुए 2% पे मरने वाले अल्लाह पाक इस तरह के जो बाफ़ मुसलमान हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, अल्लाह इनके दिलों में अपना खौफ डाल दे कि ये माबून और मददगार बन रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों की लाशें गिरवाने में, उनके परख्चे उड़वाने में, उनको लहू लहान करवाने में, उनके ऊपर हमले करवाने में, कि जो यहूदी असला इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह पाक उसमें वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें फंडिंग कर रहे हैं एक तरह से कि मारो मेरे मुसलमान भाइयों को। और शैतान ने उनके कान में कह दिया कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी तो इन लोगों की लगी है, उसमें काम तो मुसलमान कर रहे हैं, अभी तक ये लोग दो रोटी के चक्करों से नहीं निकल सके, ये जानों की अहमियत नहीं समझ सके, ये परख्चे लाशें उड़ते हुए उनको नज़र आ रहे हैं लेकिन उन पर असर नहीं हो रहा उनको, ये बस शैतान ने कह दिया कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अल्लाह पाक ऐसे मुसलमानों को हम सबको हिदायत अता फरमा, ईमानी गैरत और हमीयत अता फरमा, दुनिया का कुत्ता बनने से अल्लाह पाक हम सबको बना ले बचा ले, अल्लाह पाक दुनिया का कीड़ा बनने से बचा ले, या अल्लाह मरने से पहले मरने की तौफीक अता फरमा, अपना खौफ अपना हमारे दिलों में अपना खौफ और तकवा नसीब फरमा। या रब करीम या रहम रहीम, ये जो यहूदी हमले कर रहे हैं अल्लाह इन खबीसों को अल्लाह जल्द से तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा, सफ़े हस्ती से मिटा दे। ये खबीस एक प्लानिंग के तहत खाना भेजते हैं मुसलमानों के लिए और जब सारे मुसलमान चारों तरफ से निकल जो छुपे हुए होते हैं एक जगह जब जमा होते हैं, जब बेचारे लूटमार होती होती है खाने में, फिर ऊपर से एक जहाज़ आता है उन सबको अल्लाह पाक शहीद कर देता है। अल्लाह पाक किस किस तरह से मुसलमानों को मार रहे हैं अल्लाह पाक, लेकिन हमें ज़रा सी भी कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है, हमारे दिनों रात वही हैं, वही हम बोटियाँ रोटियाँ खाते रहते हैं, बल्कि माबून मददगार बन रहे हैं उनकी प्रोडक्ट खरीद खरीद के। अल्लाह पाक हम बरी ज़िम्मा हैं, अल्लाह पाक हम बरी ज़िम्मा हैं, अल्लाह हमसे इंतकाम ना लेना, ऐसे मुसलमानों का मामला आपके पास है। अल्लाह पाक हम तो नहीं अनिल मुनकर करने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं प्यार से मोहब्बत से। अल्लाह जब तेरा अज़ाब आए तो अल्लाह हमें बचा लेना अपने अज़ाब से, अल्लाह पाक हम और ऐसे मुसलमानों को भी बचा ले, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमीन की, कुल मोमिनीन मोमिनात की सब की कामिल मगफरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.